सुरासुर मनुष्य दंड बंदिदम घोई घाई कम मलम परमामि बद्धमानम तीर्थम धम्मस्य कर्तारम्।
संसार परमागम के ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन पर विस्तार से चर्चा हुई अपने 20 घंटों में। अब जो 5 घंटे बचे हैं ना 25 घंटे में प्रवचन सार के, इसमें अपने चरणानुयोग चूलका की चर्चा करनी है, जिसमें 75 गाथाएं हैं और उसके बाद में 47 नयों का प्रकरण है परिशिष्ट के रूप में। ये सारी चर्चा 5 व्याख्यानों में अपन को समेटनी है। आज का ये व्याख्यान 201वीं गाथा से शुरू होगा और 219वीं गाथा तक होगा। एक प्रकरण भी वहां समाप्त होता है और वैसे भी जब तक 19 गाथाएं 20 गाथाएं रोजीना नहीं होंगी तो विषय भी पूरा नहीं होगा। पेज नंबर 290 पर निकालिए जहां इसका मंगलाचरण है कि द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धि द्रव्यस्य सिद्ध कहते हैं द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धि। द्रव्यान योग के अनुसार वस्तु का सही स्वरूप हमारे ख्याल में आ जाए उसके बाद ही चारित्र की सिद्धि होती है, माने द्रव्य की सिद्धि में ही चारित्र की सिद्धि विद्यमान है और चारित्र की सिद्धि में द्रव्य की सिद्धि विद्यमान है। कि द्रव्यान योग से उन तत्व ज्ञान को समझ लें और जीवन में नहीं अपनाएं तो उसका क्या लाभ होगा। इसलिए अभी तक हमने द्रव्यान योग के हिसाब से मुक्ति के मार्ग का प्रतिपादन किया, ज्ञे तत्व और ज्ञान तत्व को बताया और ज्ञे और ज्ञान के अंदर विभाग करने की प्रक्रिया को भी बताई। अब इसमें वो लिखते हैं परेपी, ये काम जैसे हमने सब अपने ही लिए किया है, अब परेशान दूसरों के लिए भी कुछ कहते हैं कि चरणान योग चूलका जैसे मानो दूसरों के लिए हो। जैसे नियम सार में लिखा ना निय भावना निमित्तम, ये नियम सार शास्त्र मैंने अपनी भावना के लिए बनाया। इसमें ये कह रहे हैं कि ये मैं दूसरों के लिए कह रहा हूं, माने जो मेरे शिष्यगण हैं उन शिष्य गणों को ऐसा तत्व ज्ञान प्राप्त करके, ये तत्व ज्ञान जो हमने तुम्हें समझाया है वो तो समझने की चीज है, अब उसे जीवन में कैसे उतारना उसकी चर्चा हम आपसे करते हैं। एक बात, दूसरी बात ये है कि ये मंगलाचरण की जो 201वीं गाथा है एवं पणनीय सिद्धे वर बस हे पुणो पुणो समय, इस प्रकार हम सिद्धों को नमस्कार करके जिनवर देव को नमस्कार करके और बार बार मुनिराजों को नमस्कार करके कहते हैं कि हम आपसे कहना चाहते हैं कि यदि दुख परिमोक्षम इच्छति, यदि आप दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो सामान्यम परिबज्जतु मुनिपना अंगीकार कर, मुनि हो जाओ। वो कहते हैं यदि तुमको दुख छूट से छूटना है तो सामान्यम, कहते हम तुमसे कहते हैं कि तुम सामान्यम माने श्रमपने को स्वीकार करो। तो ये प्रेरणा की दूसरों के लिए है ना। अब इसमें एक एवं शब्द है धन कुमार जी, तो अमृतचंद्राचार्य कहते हैं कि एवं माने कहा, एवं तो पहले कोई बात कही हो तब कही जा कहा जाता है, और आप कहें कि हमने गे तत्व ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की चर्चा की इसलिए एवं कहेंगे, तो कहते उसके साथ एवं लग नहीं सकता है क्योंकि नमस्कार की गाथा है। एवं माने क्या? वास्तव में ये नमस्कार के साथ में प्रतिज्ञा की गाथा है, इसलिए एवं कहकर जो इसकी मंगलाचरण की शुरू की गाथाएं तीन हैं उन गाथाओं को वो कहना चाहते हैं। इसलिए आत्मख्याति टीका क्या नाम तत्व प्रदीप का टीका में उन्होंने वे तीन गाथाएं उत्थानिका के रूप में इसमें लिखी। ए सुरासुर बंदिदम, सब तीर्थंकरों को वंदना करता हूं, सिद्धों को करता हूं, पंच परमेश्वर को करता हूं, और एवं सिद्धि जिनवर विषय श्रमणे, इस तरह जिनेन्द्र भगवान को, सिद्ध भगवान को और मुनिराजों को नमस्कार करके इस तरह माने उन तीन गाथाओं में। तो तीन गाथाएं मतलब यहां द्वारा भी लिख सकते थे, वो कहने का अर्थ है। और ये प्रतिज्ञा वाक्य है, वहां तो एक आधा मैं प्रवचन सार को कहूंगा, और यहां ये कह रहे हैं कि तुम श्रामण्य प्रणय को अंगीकार करो। इसे श्रामण्य प्रणय को अंगीकार कैसे किया जाता है मैं ये बात कहूंगा, और इसलिए उन्होंने उपदेश से ही बात शुरू की। उन्होंने कहा ना कि मैं दूसरों के लिए ये बात कहता हूं, इसलिए उपदेश से बात शुरू की। वो जो गाथाएं थी वो उपदेश की नहीं थी, उन गाथाओं में आपने पढ़ा तो क्या लिखा, यही मार्ग है इसलिए मैं अपने अंदर में जाता हूं, ऐसा कहकर मैं अपने अंदर में जाता हूं। व्यासीवी गाथा में कहा था, गे तत्व के प्रज्ञापन के अधिकार की अंतिम गाथा में कहा था, जब पांचवीं छठवीं गाथे के बाद प्रतिज्ञा शुरू की तब भी कहा था कि इस तरह मैं शुद्धात्मा में जाता हूं। तो वो खुद की बात कर रहे थे मानो, और अब अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि मुनिपना कैसे होता है और तुमको कैसे अंगीकार करना चाहिए। देखो ये टीका की अंतिम पंक्ति पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। यथानु पेज नंबर 393 सबसे ऊपर की पंक्ति देखो संस्कृत में, यथानुभूतस्य तत्प्रतिपत्ति वर्तमनः प्रणेतारहु वयम् मिमेव तिष्ठामः इति। जैसे कोई शिष्य एक कह रहे हो उनसे कि आप कह रहे कि ऐसा करो ऐसा करो हम सब बताएंगे, लेकिन जो बातें आप बता रहे हो वे प्रैक्टिकल भी हैं क्या, करना संभव है क्या? आप कह रहे वस्त्र तन पर रखो ही नहीं, ऐसा कहीं हो सकता है? पशुओं जैसे रह लेने लगना है, भोजन का कोई ठिकाना ही नहीं, अपने आप से बनाने की बात तो बहुत दूर, तो अपने लिए बनाया हो तो वो भी मत खाना, तो भूखों ही मर जाएंगे। तो ऐसा संभव नहीं है। तो आचार्य कहते कि नहीं, हम खड़े हैं ना तुम्हारे सामने उस मार्ग पे चलने वाले, ऐसा शब्द है वयम तिष्ठामः, हम खड़े हैं ना तुम्हारे सामने उस मार्ग पे चल के बता रहे हैं ना कैसे चला जाता है। देखो हिंदी में पढ़ो कितना बढ़िया लिखा है। उस श्रामण को अंगीकार करने का जो यथानुभूत मार्ग है उसके प्रणेता हम यह खड़े हैं ना, खड़े हैं लिखा है, अपन यहां दरवाजे पर जाए किसी पे, अपने साथ कोई आदमी बच्चा हो और बच्चे से कहे तुम अंदर जा, और अंदर जाके बोल के फला साहब आए हैं, उसे अंदर जाने में डर लगे, मैं कैसे जाऊं, मेरे को टोकेगा तो, कोई टोकेगा तो अंदर कैसे घुस आया, कोई नाराज होगा तो वो कच्चा पड़ता है तो वो कहते हैं ना तुम जाओ ना मैं खड़ा हूं ना, उसे हिम्मत आ जाती है। आचार्य उनको हिम्मत दे रहे हैं कि इस मार्ग के प्रणेता शब्द है, देखो इस मार्ग के प्रणेता हम खड़े हैं ना, ये अभिमान जैसा लगता है, लेकिन वो कहते अभिमान की बात नहीं है, ये आत्मविश्वास की बात है अंदर में, और दूसरों में आत्मविश्वास भरने की बात है। इस पंक्ति को गुरुदेव जब बोलते थे तो इतने दिन जाते थे, इतने भाव विह्वल हो जाते थे, जैसे अमृतचंदाचार्य उनसे ही कह रहे हों
कि हम खड़े हैं ना, तुम चिंता करते हो। और कुंद कुंद और अम्बचंद के भरोसे ही वो उस मोक्ष मार्ग पर चल पड़े। उसके प्रणेता हम खड़े हैं ना, वो कहते हैं तुम कोई चिंता मत करो। और अब उस प्रक्रिया की चर्चा वो शुरू में सबसे पहले कहते हैं, देखो आपिच्छ बंधु भगम विमोच दो गुरु कलत को ते हम। कि जब दीक्षा लो तो आप इच्छ बंधु विद्यम के बंधु वर्ग से पूछकर, और तो गुरु कलत्र पुत्ते हिम, गुरु माने मां बाप, कलत्र माने पत्नी और पुत्र पुत्रियां, इनसे विमोच दो, इनसे छुट्टी लेकर छूट कर। देखो दोनों शब्दों का कितनी बुद्धिमानी से प्रयोग किया है। बंधु बग्गम से तो आपृच्छ पूछकर, और मां बाप पत्नी और बच्चे इनसे छूटकर, क्योंकि ये आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। और बंधु वर्ग से तो ये कहेंगे कि मैं दीक्षा ले लेंगे, बहुत अच्छा पता क्यों, मैंने जो कुटुंबी जन हैं उनसे छूटना उतना नहीं है। बंधु बग्गम माने कुटुंबी जन, और गुरु कलत्र पुत्ते ही, ये मां बाप पत्नी और बाल बच्चे, ये जो अपने नियरेस्ट हैं, जिसे अपन वन फैमिली कहते हैं, एक परिवार कहते हैं। तो आज की भाषा में, पुराने में तो बड़ा परिवार होता था, आज की भाषा में इतना तो है कि मां बाप हमारी जिम्मेवारी है तो हम उनको अपने पास रखें, बाल बच्चे में तो रखते ही हैं और पत्नी और पति रहते ही। इतने को उन्होंने एक ग्रुप में बांटा, और भाई बंधु वगैरह उसको उन्होंने दूसरे ग्रुप में बांटा। एक से लिखा आपृच्छ और दूसरे से लिखा विमोच दो। ये तो मूल गाथा की विशेषता है। आचार्य अमृतचंद ने इसकी टीका में बहुत विस्तार से चर्चा की, और उस चर्चा में उनने इस बात पर वजन दिया, एक बात पर, कि तुम कहते हो पूछ कर और छोड़कर, ये आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं, और मां बाप से पूछ के आएंगे तो हां मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या बिना पूछे दीक्षा नहीं ले सकते? तो वो कहते कि नहीं ले सकते। ये सुनना, दो पॉइंट, पहला पॉइंट तो नहीं ले सकते, क्यों? क्यों आप बिना पूछे ही, बिना सूचना दिए ही, बिना कहे ही आगे दीक्षा ले ली तो घर वाले आपको खोजेंगे, और आप नहीं मिलेंगे तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाएंगे, क्या करेंगे, खोया हुआ गुमशुदा की तलाश में, फोटो छपवाएंगे अखबार में, और फिर आपकी खोज होगी और आप वहां पकड़े जाएंगे, आपके साथ में गुरुजी को भी पकड़ेंगे जिनने आपको लिया है। माने एक कानूनी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसलिए वो पूछना जरूरी है। वो पूछना यहां तक होता है कि वो पूछ के और आ जाए, गुरु जी से कह दें कि साहब हमने पूछ के आए हैं, तो भी नहीं तो गुरु जी कहते हैं कि मां बाप को यहां बुलाओ, तेरा क्या भरोसा, झूठ बोल रहा हो। तो हम पूछेंगे कि तुम तैयार हो कि नहीं, अगले पूछेंगे ही नहीं, उनसे कुछ ऐसी क्रियाएं भी कराएंगे, खड़े होकर संकल्प भी लगाएंगे, सबके सामने कहो, वे पूछेंगे कि पापा अदालत में से मजिस्ट्रेट के सामने कहना पड़ता है ना कि मैं स्वीकार करता हूं, मैं अनुमति आपको मांगनी पड़ेगी उन आचार्य देव के सामने, और फिर उन्हें देनी पड़ेगी, तब वे उन्हें दीक्षा देते हैं। कि जिससे ये बात नहीं पड़ेगी वो कोई गैर कानूनी चीज ना बन जाए। इसलिए उन्होंने लोक की व्यवस्था की दृष्टि से इस नियम को, अगले लोक की मर्यादा के तो बाहर होते हैं, लोक की मर्यादा के बाहर तो होते हैं, लेकिन लोक की मर्यादाएं उनके जीवन में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, इतना तो ध्यान वो रखेंगे ही ना, कोई तो गैर कानूनी काम तो नहीं करेंगे ना। फिर अब उनने कहा कि यदि वे मंजूरी नहीं दें तो आप पूछ के आने की बात कहते हो, मां बाप तैयार नहीं हूं। मैंने कहा वो भी इतना तक होता है कि असली मां बाप नहीं होते हैं तो नकली मां बाप बनाए जाते हैं और वो गुरु के सामने वो उनसे आज्ञा लेता है और वो पूछते हैं तब जाकर के वो दीक्षा देते हैं। अब आजकल उसके लिए धंधा बना लिया है, लोग बोली लगा के मां बाप बनाने लगे। उसके पीछे भावना क्या है कि उस प्रक्रिया से पार हुए बिना वो नहीं करेंगे। अब दूसरी समस्या वही है कि यदि स्वीकृति नहीं दी तो क्या करेंगे। जब आप कह रहे हैं आज्ञा लेके आए तो वो कहते हैं वास्तव में जो आज्ञा सूचना जैसी है कि आ माने मर्यादा पूर्वक और ज्ञा माने ज्ञान करा देना, शब्द शब्दों में ज्ञान करा देना कि मैं जा रहा हूं और दीक्षा लूंगा। और उसके लिए ये कहते हैं तो ऐसा ही होता है ना कि अपने ऑफिस में 10 आदमी काम करते हैं तो नीचे वाला तो ये कहता है साहब मैं जा रहा हूं 2 दिन की छुट्टी पर, मुझे छुट्टी दे दी जाए, आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। और ऊपर वाला भी कहता है ना कि भाई तुम संभाल के रहना, मैं 2 दिन में जा रहा हूं, 2 दिन बाद आ जाऊंगा। वो भी बिना सूचना दिए तो नहीं जाता है ना, उसे अपन ऑर्डर कह देते हैं कि वो ऑर्डर दे गए, अपने चार्ज फलाने को संभला गए। वो चार्ज देना कहते कह दो आप, लेकिन वो भी आखिर एक सूचना ही तो हुई ना। वो छोटा क्योंकि बड़ों से मांगता है इसलिए उसका नाम आज्ञा दे दिया। और आजकल की तो आप गवर्नमेंट सर्विस में जानते ना वैसा ही होता है ना, जैसे मान लो कोई ऐसी इमरजेंसी का वर्क हो जिसे कैजुअल लीव कहते हैं, तो शादी विवाह हो तो सब पहले से नक्की होता है, फिर भी एप्लीकेशन तो देनी पड़ती है कि आप मेरे को आज्ञा दीजिए और आज्ञा दे तो मैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। जबकि पूरी तैयारी करके सामान वामान बांध के आता है क्या, और सामने रिक्शा बुला लेता है और फिर कहता है साहब आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। हम तो नहीं है, हम कहें हमारी आज्ञा नहीं है तो रुकने वाला है वो बोला। वो एक भाषा है तो उस भाषा को भी उन्होंने यहां पर लिखा है। और वो भाषा कैसी है कि हे मेरे शरीर को उत्पन्न करने वाले शरीर की उत्पत्ति में निमित्त भूत मां बाप, ना तुम मेरे मां हो ना तुम मेरे बाप हो ना मैं तुम्हारा बेटा। और मुझे अपना भगवान आत्मा समझ में आ गया है, अब मैं उसके आत्म कल्याण के लिए जाता हूं। गुरुदेव श्री बहुत मार्मिक ढंग से इस प्रकरण को प्रस्तुत करते थे और वो ये कहते थे कि देखो निश्चय व्यवहार की कितनी मनोरम संधि है। निश्चय व्यवहार की संधि का कि हे मां हे पिता, ऐसा बोल के तो उनने व्यवहार की स्थापना की। जब यही तुम कह रहे हो कि कौन किसके मां बाप, कोई किसी के है ही नहीं, तुम शरीर के हो, तो हे मां और हे पिताजी संबोधित करके तो उस व्यवहार की मर्यादा को भंग नहीं किया। और फिर कहा कि आपका और मेरा संबंध तो देह से है, आत्मा से तो कोई लेना देना है नहीं, तो उस तत्व ज्ञान कराया क्यों। और एक तरीके से उस संबंध को निश्चय से नहीं है ना, तो निषेध करके निश्चय का प्रतिपादन किया कि कोई किसी का नहीं है। और जब यही कह दिया कोई किसी का नहीं है तो फिर छुट्टी मांगने की जरूरत क्या, वो व्यवहार से है ना तो व्यवहार से ही छुट्टी मांग रहे। निश्चय में नहीं हो तो निश्चय में छुट्टी की भी जरूरत नहीं है, मैं तो नक्की कर ही लिया है और मैं तो जाने ही वाला हूं। कहीं मां बाप मंजूरी नहीं दें तो कोई दीक्षा नहीं लेगा, ऐसा तो है ही नहीं। वो कहते वो तो ऐसा कह के और मैं जाता हूं, जाऊं या नहीं जाऊं वाली बात कहां है। लोक में जैसे आप आज्ञा कहते हो वो तो उस ये कहते हैं कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, और सामने वाला कहते हुए कि नहीं जाओ तो नहीं जाए, लेकिन वो तो कहता मैं जा रहा हूं। तो वास्तव में ये तो इन्फॉर्मेशन है लेकिन वो शब्द भाषा में दी गई इसलिए उसका नाम आज्ञा दिया। तो ये बराबर आप इसको पढ़ेंगे टीका में तो विस्तार से उन्होंने 2-3 गाथाओं की टीका में ये सब उन्होंने एक एक चीज का ये सब बताया है। अभी अपन को पढ़ने का समय नहीं है इसलिए अपन अगली गाथा पढ़ते हैं।
जदेजाद रूप जादम उपाद्य केश मनसुगम शुद्धम रहितम हिंसा दीदो अपडिकम महबदी लिंगम मुच्छारंभ विजुत्तम जुत्तम उपयोग जोग शुद्धिम अब ये कह रहे कि वो दीक्षा आज्ञा लेकर महाराज के पास जाकर जो वो लेंगे दीक्षा तो उस दीक्षा में लेंगे क्या कि वो मुनि दशा धारण करेंगे श्रामण्य धारण करेंगे तो श्रामण्य दो प्रकार का होता है एक अंतरंग और एक बहिरंग जिसे हम द्रव्य लिंग और भावलिंग कहते हैं देखो तो वो कहते हैं कि वो दोनों ही द्रव्य लिंग और भावलिंग दोनों धारण करेंगे। हमारे समझ में जो पहले मैंने द्रव्य लिंग और भावलिंग पर 5-4 व्याख्यान किए थे ना उसे कैसेट भी है और किताब भी तैयार होने वाली है अन्ना जी पीछे पड़े हैं जब भी काल आएगा उसका काम होगा। तो द्रव्य लिंग और भावलिंग के बारे में हमारी बहुत गलत धारणा है। द्रव्य लिंग शब्द सुनते ही ऐसा हमको लगता है जैसे मुंह में कुछ कड़वाहट आ गई हो। द्रव्य लिंग माने ऐसा लगता है हमको हे है बिल्कुल रुद्दी बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है और भावलिंग माने ऐसा बिल्कुल मोक्ष स्वरूप ही लगता है। लेकिन कोई भी मुनिराज द्रव्य लिंग और भावलिंग दोनों के बिना कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं करेंगे और ये बात सिद्ध चक्र विधान की जयमाला में लिखी ना भाव लिंग बिन कर्म खिपाई और द्रव्य लिंग मुनि शिव पद जाई यों अयोग कारज नहीं होई तुम गुण कथन कठिन है सोई। ये अयोग कारज है कि द्रव्य लिंग के बिना कोई मोक्ष चला जाए और भाव लिंग के बिना उसे कर्मों का नाश हो जाए। तो दोनों अनिवार्य है कि नहीं? और दोनों अनिवार्य तो एक बुरा और एक अच्छा कैसे? कि सब शास्त्र में बहुत निंदा आती है द्रव्य लिंग की। गाथाएं की गाथाएं लिखी वो तो भाव लिंग के बिना जो द्रव्य लिंग है उसकी निंदा आती है। जो भाव लिंग के साथ द्रव्य लिंग होती है उसकी निंदा नहीं आती है। द्रव्य लिंग भाव लिंग के साथ भी होता है तो फिर आप एक कहोगे द्रव्य लिंग के बिना भावलिंग बेकार है तो उसकी भी निंदा आनी चाहिए थी। उसकी बिल्कुल नहीं आती है तो इसमें से कुछ लगता तो है ना गड़बड़। तो उसकी निंदा इसलिए नहीं आती है कि भावलिंग द्रव्य लिंग के बिना होता ही नहीं है और तो द्रव्य लिंग भावलिंग के बिना हो जाता है। तो जब वो अकेला होता ही नहीं है जब तो हम किसी को भावलिंगी कहते हैं तो उसका अर्थ है कि द्रव्य लिंगी तो वो है ही वो अकेला होता ही नहीं है इसलिए उसकी भावलिंग की निंदा नहीं आती है। और एक भावलिंग के बिना जो द्रव्यलिंग है उसे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा और द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग से कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं भावलिंग ही नहीं होगा कुछ नहीं होगा का सवाल तो गलत है। भावलिंग हो अब उस वजह से हमारे दिमाग में द्रव्यलिंग में हे बुद्धि और भावलिंग में उपाधि बुद्धि होगी दोनों ही अनिवार्य हैं। अब एक पॉइंट दूसरा पॉइंट यह है कि द्रव्य लिंग बाह्य क्रिया का नाम है उसका होना तो अनिवार्य है लेकिन शरीर की नग्नता आदि है इसलिए वो क्रिया रूप है सुभाव रूप है और भावलिंग शुद्धोपयोग रूप है शुद्ध परिणति रूप है। अब शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति की प्रशंसा तो होगी यद्यपि द्रव्य लिंग के बिना मोक्ष नहीं होता लेकिन द्रव्य लिंग से मोक्ष नहीं होता क्योंकि वो तो जड़ की क्रिया है और आत्मा का मोक्ष उससे क्यों होगा। तो इसलिए भी ये बात आती है कि जिनका वजन ज्यादा क्रिया पर हो जाता है वो उन लोगों के लिए उपदेश है लेकिन हमें वस्तु के स्वरूप समझना चाहिए। इन्होंने दोनों ही तरफ अंतरंग और बहिरंग लिंगों की यहां चर्चा की
और दोनों का एक करके बताया कि दोनों ही जब वो दीक्षा लेता है तो मुनिराज उसके कपड़े खोलते हैं, कपड़ा खोलता है, केस लुंच करते हैं, तो जो फिल्म बनती है वो तो द्रिवलिंग की बनती है, वो भावलिंग की धोरी बनती है। हाँ, और भावलिंग तो देख क्या दे रहे हो, वे क्या ले रहे, तो देखो क्या है, यथा जाद रूप जादम, द्रिवलिंग की बात चलती है पहली गाथा में बहिरंग की, कि जैसा वो मां के पेट से पैदा हुआ था ऐसा रूप। एक लंगोट रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, कि मां के पेट से लंगोट पहन के आया हो तो रख सकते हैं। यथा जात रूप धरा, उत्पादित केस और अपने हाथ से केस उखाड़ना, नाई से नहीं बनवाना, क्या दिक्कत है नाई से बनवा लें तो, इतने तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है, नाई की जरूरत है, फिर उसे पैसे की जरूरत है, फिर सारा दुष्चक्र शुरू होता है। वो क्रिया नाई से बनवाना स्वाधीन क्रिया नहीं है ना, और केस लंच भी दूसरों ही से करवा रहे कुमार जी, तो फिर तो नाई से ही करवा लेना अच्छा है, क्योंकि नाई कम से कम पैसा से तो मिल जाएगा, अरे दूसरों का तो मिलना इतना आसान नहीं है, वो तो स्पेशलिस्ट बहुत कम होते हैं। मैंने उसके पीछे बात क्या, बनवाने में दिक्कत क्या थी, वो ये देखो लिखा ना कि उत्पादन सिर के और दाढ़ी मूछ के बालों को लॉन्च किया है, और शुद्ध अकिंचन हिंसादि से रहित, प्रतिक्रम माने शरीर के श्रृंगार आदि से रहित, ऐसा जो श्रामण्य है वो बहिरंग लिंग है। अब आज श्रृंगार से रहित लिखा ना, जैसा मुनिराज क्या श्रृंगार करेंगे, अरे वही जो दाढ़ी माड़ी के ऐसा ठीक ठाक करके उसको आप देखो क्या कैसे बढ़िया बढ़िया फोटो आते हैं, वो श्रृंगार में ना, तो उसके लिए भी उन्हें श्रृंगार से रहित, और कहते मूर्छा से रहित, आरंभ से रहित, उपयोग और योग की शुद्धि वाले और पर की अपेक्षा से रहित, ये अंतरंग लिंग है। इस तरह ऐसे अंतरंग लिंग और बहिरंग लिंग को गुरु की साक्षी पूर्वक वो ग्रहण करते हैं, इसलिए गुरु ने दीक्षा दी ऐसा कहा जाता है ना। फिर ये गाथाएं हैं, उसमें सभी बताया है कि गुरु कौन है, कैसे हैं। तो गुरु दो तरह के गुरु होते हैं, एक तो दीक्षा गुरु और एक निर्यापक गुरु। अब निर्यापक गुरु, निर्यापकाचार्य, एक आचार्य एक निर्यापकाचार्य। तो आचार्य कौन है, कि आचार्य तो वे हैं जो दीक्षा देते हैं, सब समझा दिया। एक मुनिराज हैं, उनने 1000 आदमियों को दीक्षा दे दी, आचार्य हैं बड़े। तो अब 1000 के रोजाना क्या गलती कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो उन आचार्य महाराज के पास इतना समय नहीं है इतने लोगों को वो डील कर सकें और उनका ध्यान रख सकें। तो जो उन्हीं के अंडर में और ऐसे आचार्य होते हैं जो उनके सहयोगी, जो उन्हें सौंप देते हैं कि भैया जरा इसको तुम संभालना, इन 10 विद्यार्थियों को तुम संभालना, इन 10 को तुम संभालना, इनको तुम देखना क्या करते हैं, इनकी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम बताना, जो रोजाना भोजन करने आए और फिर आज गलती हुई तो प्राश्चित विधि से शुद्ध करना, कोई गलती हो गई हो तो ये करना। वो दीक्षा छेद जैसा प्रसंग आ जाए तो वो मूल आचार्य के पास जाएगा केस, लेकिन वो रोजिना की गलती वो जो काम निपटाते रहना है तो ऐसा जो काम निपटाते हैं निर्यापक आचार्य, मतलब निभाने वाले आचार्य। अब धीरे धीरे जब वो अपने आप जब होशियार हो जाएंगे, अपनी क्रियाओं में हो जाएंगे, तो उतनी ही निर्यापक आचार्य को तकलीफ कम हो जाएगी, उनसे उतना ही उनको ध्यान कम रखना पड़ेगा। तो इस तरह से वो सारा वर्णन यहां पर उन्होंने कहा था ना कि हम खड़े हैं, उन्होंने उन सबको दीक्षा देना, उनको कैसे संभालना, कैसे मूल गुण, 28 मूल गुणों के नाम है, नहाना नहीं, दंत धोबन नहीं करना, वो सब वर्णन इसमें दिया हुआ है कि ये सारी चीजें वो मुनिराज ये करते हैं। देखो पेज नंबर 409 है ना, इसकी टीका में वो बात लिखी है जो मैंने आपको बताई है, 408 पेज पे नीचे टीका है। देखो जो आचार्य लिंग ग्रहण के समय निर्विकल्प सामायिक संयम के प्रतिपादक होने से प्रविद्यादायक हैं, वे गुरु हैं, और तत्पश्चात तत्काल ही जो आचार्य सविकल्प छेदोपस्थापना संयम के प्रतिपादक होने से छेद के प्रति उपस्थापक हैं, वे निर्यापक हैं। उसी प्रकार जो आचार्य छिन्न संयम के प्रतिसंधान के विधि के प्रतिपादक होने से छेद होने पर उपस्थापक हैं, वे भी निर्यापक हैं। इसलिए छेदोपस्थापक पर भी होते हैं। पर भी माने उन आचार्यों के अलावा दूसरे भी होते हैं। ये वास्तव में वो व्यवस्था संबंधी बातें हैं कि वो संघ का इतने बड़े संघ का संचालन कैसे हो और वो कैसे, तो नए नए मुनिराज आएंगे ना तो क्रियाएं भी नहीं समझते हैं। अरे आप देखो अब उनको भी कोई आचार्य निर्यापक आचार्य नहीं थे उनके पास, ना तो ऋषभदेव ने उन्हें दीक्षा दी थी, ना ऋषभदेव ही आचार्य नहीं थे, तो उनकी क्या दुर्दशा हुई। तो इसलिए चाहे जैसे लोग दीक्षा भी ले लेंगे तो वो आचार्य पहले पूरी परख करेगा कि इसे पात्र है कि नहीं। तो एक तो अपात्र जीव दीक्षा नहीं लेंगे, आचार्य के दीक्षा लेने से इस पर कंट्रोल होता है, और दूसरी जो उसकी थोड़ी अजानकारी होगी, अनभ्यास है, उसके लिए वो कुछ दिन देखरेख में रख के अपनी अथवा अपने शिष्यों की देखरेख में रखकर उसको परफेक्ट कर देंगे। इसलिए सारी प्रक्रिया का वर्णन उन्होंने किया है। पेज नंबर 410 पे टीका पढ़ते हैं, अच्छी है वो। संयम का छेद दो प्रकार का है। उन्होंने कहा था छेदोपस्थापक, एक आचार्य तो दीक्षा देने वाले हो, एक छेदोपस्थापक कि कोई गलती हो जाए तो उसको सुधार के उसे ठीक कर दे। अब गलती ऐसी भी होती है कि डांट फटकार के ही काम चल जाए, गलती ऐसी भी होती है कि दंड दे दिया जाए, और गलती ऐसी भी होती है कि निकाल के बाहर कर दिया जाए। क्यों? और फिर वो द्वारा भर्ती होने आ तो सारी प्रक्रिया से गुजरे, फिर द्वारा भर्ती कर लें। और गलती ऐसी भी होती है कि निकाल के बाहर करें और फिर द्वारा आए तो भर्ती नहीं करें। चार तरह की गलतियां होती ना, जैसे मुनिराजों में भी ऐसा चक्कर चलता है। क्यों? एक तो गलती ऐसी होती है कि उस गलती की माफी मांगी और काम निपट गया। एक गलती ऐसी होती है कि वो कहते तुम 3 दिन का उपवास करो इस गलती के सुधार के लिए, वैसे तुम्हारे प्राश्चित हो जाएगा। एक गलती ऐसी होती है कि उनकी दीक्षा छेद दी जाती है। एक गलती ऐसी होती है कि दीक्षा द्वारा दे देते हैं फिर। और एक ऐसी होती है कि भैया अभी संघ से निकाल के बाहर करो, इस आदमी से झंझट छटाओ। तो वो सबकी वर्णन देखो किया है। संयम का छेद दो प्रकार का है, बहिरंग और अंतरंग। उनमें मात्र काय चेष्टा संबंधी वह बहिरंग है। देखो माने ऐसी गलती जो शरीर से हो जाए तो सबको दिखेगी कि नहीं दिखेगी, और उपयोग संबंधी वह अंतरंग है। उसमें यदि भली भांति उपयुक्त श्रमण के प्रयत्नकृत काय चेष्टा का कथनचित बहिरंग छेद होता है, जो आया ना, अब काय चेष्टा का कथनचित माने थोड़ा बहुत, और ये पूरा कपड़े ही पहन लिए, समझे ना, तो वह सर्वथा अंतरंग छेद से रहित है। इसलिए आलोचना पूर्वक क्रिया से ही उसका प्रतिकार इलाज होता है। मतलब वो अंतरंग में तो छेद हुआ नहीं, और काय में कोई गलती हो गई काया से तो वो आलोचना करेगा ना, और उससे उसका काम हो जाएगा। बोलेंगे ना जल छान जबानी कीनी सो भूपुन बादो दीनी, जैसे बना जाता है। मैंने उसने आलोचना की, गलती स्वीकार की और बात खत्म। आता कि नहीं आता कि साहब आए, एक तो आया बुलाया, क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ साहब, गलती हो गई, लेट क्यों आए प्रवचन में, गलती हो गई, कल से सिकंदर पे आएंगे, ध्यान रखना, इतनी तो छुट्टी हो जाती है। और एक स्टैंड अप ऑफ द बेंच खड़े रहो, पूरे प्रवचन में खड़े रहो, ऐसी भी सजा हो सकती है। क्यों? एक ऐसी भी हो सकती है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि उसके भेद हैं, सब लिखा ना। किंतु यदि वही श्रमण, तब आप कह रहे कि मुनियों को भी खड़ा कर देते होंगे, क्यों? तो हमारे विद्यार्थियों जैसा मुनियों की बात करते हो, अरे तुम्हें तो यही खड़ा करते, लेकिन उन मुनिराजों को तो श्रुत सागर को अकंपनाचार्य ने वहां जाकर खड़ा कर रहने को बोला रात भर, तुम्हें तो घंटा घंटा करते होंगे, 2-5 मिनट को करते होंगे। क्यों? कि रात भर खड़े रहो कि जहां उन पर आक्रमण होने की आशंका थी और जान जोखम में थी। बोलो मुनि हो जाएंगे तो अनुशासन में नहीं रहना पड़ेगा, क्यों? और क्या गलती थी? सावन ने बड़ी गलती की, हमने थोड़ी ऐसी गलती की थी। उन्हें क्या गलती की थी? जो कि सिनेमा थोड़ी चले गए थे, उन्हें किसी लड़के से मारपीट थोड़ी करी थी, उनने तो उन मंत्रियों से थोड़ी तत्व चर्चा कर ली थी। तत्व चर्चा करना भी गलती होती है, क्यों? कि रास्ते चलते तत्व चर्चा की थी, ये गलती थी। धन कुमार जी साहब बस में बैठे हैं, यहां बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, दया वाले यहां वाले सुन रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो वहीं लड़ पड़ते हैं उसी तत्व चर्चा करते करते। बैठकर एक जगह शांति से करने की चीज है, इसको मजाक मत बनाओ। उनने क्या की थी? तत्व चर्चा तो की थी, और किन से की थी? चाहे जिससे, चाहे जिससे करने की चीज नहीं है। सामने वाला चर्चा ही नहीं करना चाहता हो, तुम चर्चा कर रहे हो, वो कह रहा भाई मैं नहीं करता, मेरे पास समय नहीं, मैं बात नहीं करने को, मेरे फुर्सत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। जबरदस्ती होती चर्चा क्यों? उनने यही तो की थी, तुम कहां से आ रहे हो? इस भव से नहीं, अगले भव से शुरू कर दी। तो सामने वाले तैयार थे पूरा भव पर भव की चर्चा करने को। रास्ते चलते विधर्मियों से खड़े खड़े रास्ते में चर्चा की थी, ये गलती थी। और दंड क्या मिला था? क्यों? अब इतना बड़ा दंड तो ना शांति जी देते हैं, शांति तो दंड देंगे क्या बेचारे? शांति स्वरूप है, बड़े ज्यादा भी नहीं देते, क्यों? इसको इसको याद करो तुम, जब भी कोई ऐसा लगे कि हमारे साथ बहुत कठोर दंड दिया गया है, उस दिन इस घटना को याद करना, तो बिल्कुल तुमको वो बहुत हल्का फुल्का लगेगा। तो उन श्रुत सागर के सामने तुम क्या हो? श्रुत सागर तो उनकी उपाधि थी, मैं शास्त्री हो गया हूं, मैं फाइनल हो गया हूं साहब, मैं कोई प्रीवियस कोई का थोड़ी हूं, फाइनल का हूं, मेरे को इतना बड़ा दंड दे दिया, क्यों? वो श्रुत के सागर थे, श्रुत सागर उनकी उपाधि थी, वो कोई नाम थोड़ी था। और वो ऐसे थे कि जो सामने वाले का रास्ते चलने वाले का पूरा भव जान ले, अवैध ज्ञानी थे, वो साधारण नहीं थे कि बिना पढ़े लिखों को दी जाती है। क्यों? शास्त्री हो गए तो तुम्हें अनुशासन की कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्यों? तो वो सल दिखाना दो, किंतु यदि वही श्रमण उपयोग संबंधी छेद होने से साक्षात छेद में ही उपयुक्त होता है, तो जिनोक्त व्यवहार विधि में कुशल श्रमण के आश्रय से आलोचना पूर्वक उनके द्वारा उपदिष्ट अनुष्ठान द्वारा संयम का प्रतिसंधान होता है। माने कायिक चेष्टा में तो तत्काल योजना की जो क्रिया आलोचना प्रतिक्रमण है उससे काम चल जाता है, यदि भाव से कोई गड़बड़ होती है। अब भाव की गड़बड़ तो दे ही बताएं, दूसरों को तो पता चलेगी नहीं। तो इतना तो मान के चलते ही अगर छठवें गुणस्थान में जो होगा निगमबा दीक्षा ली है तो उसके लिए गवाही सफाई नहीं बुलाना पड़ेगा, मैंने नहीं किया, तो किया इसने, वो अपने आप सारे अपराध बता देगा, उनसे शुद्ध करता है। तो इस तरह से ये सारी विधियों का वर्णन उन्होंने इसमें किया है, जो अब मूलतः आप पढ़ेंगे तो आपके ख्याल में आएगा। अभी पेज नंबर 416 देखो, ये भावार्थ पढ़ना चाहता हूं 416 पर, जो भावार्थ है बहुत मार्मिक है। आगम विरुद्ध आहार विहार आदि तो मुनि ने पहले ही छोड़ दिए हैं। मतलब इसकी तो क्या बात करना, आगम विरुद्ध आहार विहार तो मिलेंगे ही नहीं, वे आहार लेने जाएंगे आगम विरुद्ध तो कोई देगा ही नहीं। अब संयम के निमित्त पने से की बुद्धि से मुनि ने जो आगमुक्त आहार अनशन गुफादि में निवास विहार देहमात्र परिग्रह और अन्य मुनियों का परिचय और धार्मिक चर्चा वार्ता पाए जाते हैं अब ये इनमें अपराध होने की बात है, उनके प्रति भी राग आदि करना योग्य नहीं है। कितना साफ लगा देखो, ये प्रतिसार में लिखा है। किन किन में? कि मुनि की भूमिका के योग्य आहार, हम बिल्कुल निर्दोष आहार लेते हैं, अनशन, उपवास, गुफादिक में निवास, विहार, देहमात्र परिग्रह और अन्य मुनियों का परिचय और धार्मिक चर्चा वार्ता, ये भी इनके प्रति भी राग रखना अच्छी बात नहीं है। ये कोई बहुत बढ़िया काम है, ये कोई अभिनंदनीय काम है मुनिराज के लिए, ऐसी बात नहीं है। देखा क्या नहीं, इनमें रागादि करना भी योग्य नहीं है, उनके विकल्पों से भी मन को रंगना देना योग्य नहीं है। रंग लग जाए, मन रंग लाग गयो, रंग लाग गयो, रंग लाग गयो, उसका इसका भी रंग नहीं लगना चाहिए। तत्व चर्चा का भी रंग नहीं लगना चाहिए मुनिराजों को। लिखा क्या नहीं, लिखा ये सब लिखा क्या नहीं, पढ़ना अच्छी तरह से घर पे देख के। इस प्रकार आगमोक्त आहार बहारादि में भी प्रतिबंध प्राप्त करना योग्य नहीं है, क्योंकि उससे संयम का छेद होता। प्रतिबंध प्राप्त करना माने कोई रंगना, प्रतिबंध प्राप्त करने का मतलब प्रतिबंधित होना नहीं, माने उसके प्रति अपने को प्रतिबंधित करना, उसके प्रति अपने को प्रतिबंधित करने का। रोज आना, मैं एक घंटा चर्चा करता हूं, 2 बजे से 3 बजे तक तत्व चर्चा करता हूं। मुनि महाराज ने समय नक्की कर दिया और सब बैठे, कोई महाराज समय नक्की नहीं करते, किसी को कोई समय नहीं देते, क्योंकि समय देते ही बन जाते हैं, फिर दूसरी जगह नहीं जा सकता ना, हमें बिकल दूसरी जगह जाने का आ जाए तो कहेंगे महाराज ने समय दिया था हमें 2 बजे का, हमें मिले ही नहीं। तो कहते हैं वो इन सब बातों के प्रति अपने को प्रतिबंधित नहीं करते हैं। अपन तो प्रतिबंध काय को मानते हैं, वो कहते हैं प्रति प्रतिबंध नहीं करना, प्रतिबंधित नहीं होना, क्योंकि इससे भी संयम का छेद होता है। देखो अब पेज नंबर 417 के आगे या इसकी टीका पढ़ो। अशुद्धोपयोग वास्तव में छेद है, ये छेदोपस्थापना की बात चल रही ना, कि छेद हो जाए यदि जो हमने मुनि दीक्षा ली है उसका छेद हो जाए तो उपस्थापना माने फिर द्वारा हमारा वो ठीक कैसे हो, उस छेदोपस्थापना उसे बोलते हैं। तो कहते वास्तव में तो हम शुद्धोपयोग से अशुद्धोपयोग में आए, वो छेद ही है, तो कुछ छेद तो अनिवार्य है, छठवां सातवां गुणस्थान तो होता ही रहता है। तो ऐसे छेदों की उपस्थापना छठ में हमें आए और सातवें में चले गए तो हो गई, तो ऐसी छेदोपस्थापना तो होती ही रहती है। कहते हैं अशुद्धोपयोग वास्तव में छेद है, क्योंकि शुद्धोपयोग रूप सामान्य का छेदन हो जाता है, शुद्धोपयोग रूप जो मुनि धर्म है उसका छेद हो जाता है, इसलिए वो छेद है। अब शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके तो उसका छेद हो गया, और वही अशुद्धोपयोग हिंसा है। देखो अशुद्धोपयोग में आया और यह हिंसा है भाई, अभी कौन हिंसा मानता है? यही तो कहता हूं कि आश्चर्य कि कहां तो अमृतचंद्राचार्य जैसे क्या लिखते हैं कि अशुद्धोपयोग में आए मन तीव्रतम स्वभाव तो भी वो हिंसा है, और यहां जैसी हिंसा ग्रस्त भी नहीं करते हैं, आज वैसी हिंसा में मुनिराज प्रवृत्त हो रहे। कि कैसा वैसी कैसे करेंगे, क्या नहीं करते? मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा मकान बनाना नहीं, बहुत पैसा हो जावे तो बना बनाया खरीद लेना, बनाने में बहुत हिंसा है। क्यों राजू भाई, आपके पिताजी भी बोलते होंगे, बहुत लोग हमारे बुजुर्ग लोगों में ऐसी धारणा थी। नए लोग कहते थे कि पापा आप समझते तो हो नहीं, अब पुराना की डिजाइन अपने मन की नहीं होती है ना, अपन अपना नया बनाए तो एक एक चीज अपने मन से बना सकते हैं, कहां कील गाड़नी, कहां नहीं गाड़नी, कैसी लेटरिन बाथरूम बनानी, भैया जैसे बने उसमें निभा लेना, क्या है समय निकालना है ना। तो एक मकान बनाने में अपने घर के लिए 2 कमरे के लिए निषिद्ध करते थे। मेरे पिताजी कहते थे अदालत का मुंह नहीं देखना, अदालत का मुंह देखना देखा इसका मतलब जैसे बेस्या के यहां जाना जैसा हो गया, एक बिब्बो हो गया, वो बहुत अदालती आदमी है, अदालत में ही खड़ा रहता। क्यों, हमें क्या करना, हमें नहीं चाहिए न्याय, अन्याय थोड़ी मिलता अदालत में। नहीं, हमें नहीं जाना अदालत में, ऐसा काम ही नहीं करना कि अदालत में जाना पड़े। और अभी तो देखो कि सब बड़ी बड़ी पहाड़ियां कट रही हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, धंधा हो रहा है, गायें पाली जा रही हैं, गौशालाएं खुल रही हैं, है ना। ये बिल्डिंग एक साल के भीतर बन जाना चाहिए, दो साल के भीतर बन जाना चाहिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नीरज जी मजे से कहते थे कि 4 अरब के प्रोजेक्ट चल रहे हैं मुनि महाराजों के द्वारा दिगंबर जैन समाज में, और जिसमें वो कह रहे थे कि जिसमें 1.25 अरब 1.5 अरब के तो एक ही महाराज के पास है। देखो, अशुद्धोपयोग हिंसा है, क्या लिखा है उसमें, शुद्धोपयोग सामरण का हनन होता है, इसलिए श्रमण के जो अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होती, ऐसी शयन आसन स्थान गमन इत्यादि में अप्रियत चर्या वह वास्तव में उसके लिए सर्वकाल ही संतान वाहिनी हिंसा है, जो कि छेद से अनन्यभूत है। माने ये जब खाना पीना उठना बैठना, अब इसमें रोजाना उसको होना ही होना है, इसलिए रोजाना प्रतिक्रमण, रोजाना आलोचना, ये रोजाना क्यों बनाई, क्योंकि ये तो रोजाना की होने वाली छेदोपस्थापना है। और जो शुद्ध जो विशिष्ट गलती होती है तो वो उसका विशिष्ट प्रायश्चित वगैरह दिया जाता है। देखो अब ये वो असली गाथा आ गई है प्रवचन सार की, कि जो बहुत प्रसिद्ध है और जिसके आधार पर एक श्लोक पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ में भी है कि मरदु बजिये दो जीवो ऐदाचारस्य निच्छदा हिंसा पैदस्य नति बंधो हिंसा मेतेन समीदस्य। मरदु बजिये दो जीवो, जीव मरे वो चाहे जिंदा रहे उससे किसी को हिंसा नहीं होती। देखो सारा जगत जीव के मरने जीने को हिंसा मानती है, ये प्रतन साल की गाथा क्या करें। लेकिन अयदाचारस्य निच्छदा हिंसा, लेकिन अयतनाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले के हिंसा नामक पाप गारंटी से होता है। क्या करें, क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि आप ऊपर को मुंह उठा के चल रहे हैं तो आपके पैर के नीचे आगे जी मरे चाहे ना मरे आपको हिंसा का पाप अवश्य लगेगा, और आप बराबर सावधानी पूर्वक चल रहे हैं चार हाथ जमीन देखकर, और कदाचित जीव आ जाए, क्योंकि इतने सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो आपको चार हाथ दूर से दिखाई नहीं दे, तो भी आपको हिंसा नहीं। तो फिर जीव के मरने और नहीं मरने से हिंसा का संबंध नहीं रहा ना, तो कहे इतना चार और इतना चार से रहा। माने हम सावधानी पूर्वक अपना आचरण करें, सावधानी पूर्वक आचरण करने वाले मुनिराज के उनके निमित्त से हिंसा भी होती है तो अभी वे अहिंसक हैं, और यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले जो ग्रस्तों के हैं वो यत्नाचार उनके वे हिंसक ही हैं। आजकल हर बात में उल्टा उल्टा चल गया है। मैं किसी का नाम लिए बिना आपको बताना चाहता हूं कि एक महाराज सवारी में शुरू कर दिया था, कार में प्लेनों में जाना, सितंबरों की बात है दिगंबर की नहीं, अभी दिगंबरों में इतनी मर्यादा तो है, कभी कार में नहीं बैठते हैं, प्लेन में नहीं बैठते हैं। तो मेरी चर्चा हुई तो वो बोले पंडित जी वो पुराना जमाना था, सवारी का त्याग इसलिए था कि वो गाय बैल भैंस पे उस पर घोड़े पे बैठते थे, बैलों पे वजन होता था तो उनको अब तकलीफ नहीं हो अपनी वजह से, अब तो पेट्रोल से चलती है तो किसी को तकलीफ ही नहीं है, और वो गाड़ी अपने ही लिए जाती थी, अभी प्लेन अपने लिए थोड़ी जाता है, वो तो जाना ही है, दिल्ली जाना है, ऐसा बोले। मैंने कहा महाराज ऐसा नहीं है, ले क्या है कि अपन ईरिया समिति पूर्वक चलते हैं ना मुनिराज नंगे पैर, तो वो घोड़ा थोड़ी ईरिया समिति पूर्वक चलेगा, नंगे पैर तो चलेगा, वो बैल थोड़ी ईरिया समिति पूर्वक चलेगा, वो इरिया समिति का पालन नहीं होगा। तो मुनिराज के इरिया समिति होना चाहिए कि नहीं, ये तो 28 मुनिगणों में है कि नहीं, तो इरिया समिति कैसे पलेगी? वो प्लेन इरिया समिति पूर्वक चलेगा, वो ट्रेन इरिया समिति पूर्वक चलेगी, वो कार इरिया समिति पूर्वक चलेगी, उसकी इतनी तेज रफ्तार है। लेकिन वो अपने तर्क लगा करके उन्होंने वो शुरू कर दिया, नहीं वो शुरू कर दिया, नगर में हम थोड़ी कर रहे हैं, ग्रस्त कर रहे हैं, रोजना चंदा कर रहे, चिट्ठा कर रहे, बोल रहे, बुला रहे, यहां तक कि मजदूरों का पैसा भी चुका रहे, यहां बैठे बैठे रसीद काट रहे। एक तो महाराज मेरे से बोले कि पंडित जी मेरी 3000 रुपये रोज की प्रैक्टिस है, इस सब में बोला प्रैक्टिस है रोज की 3000 रुपये रोज, माने भी यहां बैठे रहे तो रसीद कट्टा लेकर के, और लोग आते तो उनसे मांगते पैसा ले लेते। तो जैसे वकील कहते हैं मेरी प्रैक्टिस है, डॉक्टर की प्रैक्टिस होती है ना, मैंने इतना इन्वॉल्वमेंट, और यहां यहां कितनी बात कर रहे हैं, देखो आ गया ना प्रणाम के बुद्ध जी, इसको टीका को पढ़ते हैं अपन इसकी। देखो जीव मरे या जिए, अप्रियत आचार वाले के हिंसा निश्चित है, प्रियत समितिवान के हिंसा मात्र से बंध नहीं है, प्रियत ने मारे हिंसा मात्र, अशुद्धोपयोग अंतरंग छेद है और पर प्राणों का विप्रोपण वह बैरंग छेद है, इनमें से अंतरंग छेद ही विशेष बलवान है। तो अशुद्धोपयोग हो गया ना, वो तो कहते तुम शुद्धोपयोग में से बाहर आए तो हिंसा चालू हुई है, क्या बोल रहे? वो अप्रयत्न है, बहिरंग छेद नहीं है, क्योंकि पण प्राणों का विप्रोप सद्भाव हो या असद्भाव जो अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होता, ऐसा अप्रियत आचार से प्रसिद्ध होने वाला अशुद्धोपयोग का सद्भाव जिसके पाया जाता है उसके हिंसा का सद्भाव की प्रसिद्धि सुनिश्चित है। देखा क्या नहीं, अशुद्धोपयोग ही हिंसा है और वो तो उसके गारंटी से है ही है। क्यों, किसकी बात है ये उसकी, तुम्हारे तो शुद्धोपयोग होगा, माने अपन निरंतर के हत्यारे हैं, निरंतर के हिंसक हैं, क्यों कि अपन अशुद्धोपयोग में नहीं है। अभी अप्रयोजन कर रहे हैं, अप्रयोजन सुन रहे हैं, मैं तो कभी चींटी को नहीं मारी, मैं तो कभी हिंसा की नहीं, मैं तो किसी की हत्या की नहीं, मैं तो हत्या की नहीं, और किसी आदमी की हत्या करने को हत्या समझता है आदमी, ये तो कहते जीवों के मरने जीने से इसका संबंध है ही नहीं, ये तो तेरे अंदर में तुम्हें शुद्धोपयोगी नहीं है तो हिंसक ही है, शुद्धोपयोगी ही एकमात्र हिंसक है। ये प्रचन सार में चरणानी योग चूलिका में लिखा है। देखो अगली गाथा 218, अयदाचारो समणो सस्विका ये भी बंद करो तिमदो, अप्रियत आचार वाला श्रवण छवों काय संबंधी बध का करने वाला मानने में कहने में आया है। देखो आ गया ना, छह काय के जीवों का हिंसक है वो, अब उनको चलता है तो यदि सदा प्रयत्न रूप से आचरण करे तो जल में कमल की भांति उसे निर्लेप कहा गया है। इसलिए आचरण की सिद्धि कितनी जरूरी है, वो ऊपर मुंह चलाने की देख के चलने की बात नहीं है, आप समझे ना। वो क्या कह रहा है कि यद्यपि पद वस्तु के कारण रंच मात्र भी हिंसा नहीं होती, पर वस्तु निबंधना है ना, तथापि परिणाम विशुद्धे कार्या, तो भी परिणामों की विशुद्धि के लिए अप्रतनाचार को छोड़ना चाहिए। अब इसी का जो भावार्थ है वो पढ़ो, शास्त्रों में अप्रियत आचारवान अशुद्धोपयोगी को छह काय का हिंसक कहा है, मिला क्या नहीं मिला, और प्रियत आचारवान शुद्धोपयोगी को अहिंसक कहा है। इसलिए शास्त्रों में जिस जिस प्रकार से छह काय की हिंसा का निषेध किया गया हो उस समस्त प्रकार से अशुद्धोपयोग का निषेध समझना चाहिए, कि जहां हिंसा का निषेध किया गया हो समझ लेना अशुद्धोपयोग का निषेध है। अशुद्धोपयोग में शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों आते हैं। इसी का भावार्थ, अशुद्धोपयोग का असद्भाव ही, पेज नंबर 423 पे, अशुद्धोपयोग का असद्भाव ही हो तथापि काय की हलन चलनादि क्रिया होने से परजीवों के प्राणों का घात हो जाता है। कि देखो अशुद्धोपयोग का असद्भाव मन शुद्धोपयोग, अशुद्धोपयोग में भी काय हिल रही है। अब हम तो ये कल्पना ही नहीं कर सकते, हम तो ध्यान की अवस्था है, वो तो ऐसा बिल्कुल अकड़ के रखे, ऐसी गर्दन नहीं हो सकती। लेकिन लिखा नहीं ऐसा क्यों अन्ना जी, मतलब क्या करेंगे, क्या हमारे हाथ में है क्या? हिलेगी तो हिलेगी, हम बुद्धिपूर्वक हिलाएंगे तो गया काम से, लेकिन हम नहीं भला रहे, हमने उपयोग खींच लिया उसमें से, फिर जो काय की स्थिति होगी तो होगी। एक मुनिराज को उठा के आकाश में फेंक दिया, वे शुद्ध उपयोग में है, तो काय तो हिल रही कि नहीं हिल रही बोलो, है ना? देखो लगा ना, तथापि परजीवों का घात हो जाता है, इसलिए काय चेष्टा पूर्वक पर प्राणों के घात से बंद होने का नियम नहीं है। अशुद्ध उपयोग के सद्भाव में होने वाले काय चेष्टा पूर्वक पर प्राणों के घात से बंद होता है, और अशुद्ध उपयोग के असद्भाव में होने वाले काय चेष्टा पूर्वक पर प्राणों के घात से बंद नहीं होता। इस प्रकार काय चेष्टा पूर्वक होने वाले पर प्राणों के घात से बंद होना अनेकांतिक है। ये क्या कह रहे हैं? देखो एक बहुत मार्मिक बात है, मैं अभी बता देता हूं, समय नहीं है। क्या कह रहे हैं? एक परिग्रह और एक हिंसा। अब इन दोनों में एक अंतर है कि पर प्राणों का घात हो जाए और हिंसा नहीं हो, लेकिन परिग्रह हो और पाप नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि भाव के बिना हिंसा तो हो सकती, मैंने पर प्राणों का घात तो हो सकता है, लेकिन भाव के बिना पर पदार्थ का ग्रहण नहीं हो सकता। ये भेद डाला है यहां बहुत बारीकी से, इसलिए जिनने अपना परिग्रह अपने पास रखा है और वे कहे हमारे भाव बिन नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। एक मुनिराज जाए चार हाथ जमीन देख के चले और उसके पैर के नीचे आए कोई जीव तो मर सकता है, लेकिन उसके साथ मोटर गाड़ी पीछे पीछे नहीं चल सकती। ये इसमें विशेष ध्यान देने की बात है। अंतिम श्लोक है, 14वां श्लोक ऊपर पढ़ो, बहुत बढ़िया है। वक्तव्य में तदमशेष मुक्तम एतावत यदि चेत ते त्रिकोपी रामोह। बहुत ही मार्मिक श्लोक है। आत्मख्याति में समय सार की टीका में तो उन्होंने 275-76 श्लोक लिखे, और प्रवचन सार की टीका में 2-4 मुश्किल से लिखे होंगे, उन 2-4 में से ये एक है। और ये हमारी तुम्हारी बात है, वो क्या कह रहे हैं आचार्य? वक्तव्य मेव किल यत्तद शेष मुक्तम, जो समझाने के लिए समझाया जा सकता है वो तो मैंने सब समझा दिया, ऐसा नहीं जितना बना उतना समझाया। कहते बाकी अवक्तव्य है, अवक्तव्य थोड़ा है मैंने। वक्तव्यम किल यत तत् शेषम उक्तम, जो कहने लायक था वो मैंने सब कह दिया, कहने में कुछ बाकी रखा नहीं। एतावत यदि चेतते कोपि, यदि किसी को चेतना है तो वो इतने से ही चेत सकता है। और व्यामोह जालमति दुस्तरमेव नूनम निश्चेतनस्य, जो अचेतन है उन्हें कितना ही विस्तार करो, उनके व्यामोह का जाल अत्यंत विस्तार जिनको पाया हुआ है, बचसाम मति विस्तरेति, उन्हें कितना ही विस्तार से समझाओ उनकी समझ में कुछ आने वाला नहीं। वो कहते हैं मैं यहां विराम लेता हूं, काय की कि मुनिराजों के हिंसा कैसे होती है, परिग्रह कैसे होती है, चर्या कैसे होती है, कैसे रहना चाहिए, इसकी मैं चर्चा करके इस प्रकरण से यहां विराम लेता हूं, क्योंकि समझाने लायक था वो मैंने सब समझा दिया। जिनकी समझ में आना होगा इतने से ही आ जाएगा, और जिनकी में नहीं आना है वो कितना ही विस्तार करो उनके मोह से पार पाना संभव नहीं है, इसलिए मैं विराम लेता हूं, ऐसा आचार्य कहते हैं।